ओम शांति।
हम सभी अपना सब कुछ त्याग करके बाबा पर बलिहार हो गए। जब मनुष्य अपना सब कुछ छोड़ दे तब उसे अंतर्मुखी होकर आत्मचिंतन करना चाहिए कि हम अपना सब कुछ छोड़ आए हैं, चाहे किसी के पास कुछ भी था, एक गरीब की छोटी संपत्ति भी उसका सब कुछ होता है। सब कुछ छोड़ने के बाद हम अपने से बातें करें, अपने को स्वयं प्रेरणा दें कि हमें सब कुछ प्राप्त करना है। जब बाहर से लोग हमारे पास आते हैं, जब वो आते हैं जो समर्पित नहीं हैं, या वो आते हैं जो सेंटर्स में समर्पित हैं, तो हम सबको इस नज़र से देखते हैं कि हम बहुत कुछ प्राप्त कर चुके हैं। हम सबका भाग्य इस संसार में सर्वश्रेष्ठ है भी। भगवान को देखते हैं इन आँखों से, एक सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है बाबा ने, आबू की पहाड़ी। ऐसा स्थान इस समय सारे संसार में और कहीं नहीं है। सौंदर्य हो सकता है कश्मीर में, और किसी पहाड़ी पर बहुत अच्छी चीजें हो सकती हैं, विदेशों में भी बहुत अधिक सौंदर्य है, लेकिन जैसे वाइब्रेशन यहाँ हैं, जैसी प्रकृति की मदद हम सबको है, वैसे संसार में और कहीं नहीं है। हमने अच्छे अच्छे बगीचे, बहुत बड़े बड़े गार्डन देखे जहाँ तहाँ, लेकिन जो सुख यहाँ मिलता है वो इस संसार में और कहीं नहीं। तो हम सभी को अपने इस जीवन को इतना महान बनाना है कि सभी हमें देखकर प्रेरणा लें। सोचना है सबको, ये बात हमेशा किसी और के कहने से नहीं हो सकती, मैं कहूँ या स्वयं भगवान कहे। हम सब जानते हैं बाबा हमें अनेक बार ये सब बातें कहते हैं, परंतु ये बातें उसके ही जीवन में आती हैं जो स्वचिंतन करते हैं, जो अपने को अंतर्मुखी कर देते, अंदर की ओर ले चलते हैं और अपने बारे में स्वयं सोचते हैं। हम जब यहाँ समर्पित होके आए तो हर हफ्ते में लिखा करते थे, हमें ये प्रेरणाएं दी गई थी। जब अनुभव सुनते थे यज्ञ के प्रारंभ के कि बाबा कई बार तो रोज लिखाते थे अपनी अपनी प्रतिज्ञा का पत्र, समर्पणता का पत्र, तो हमें एक प्रेरणा आती थी कि हम लिखें हम क्यों बाबा के पास आए हैं। तो बहुत अच्छे अनुभव होते थे, रूहान होती थी बहुत अच्छी, क्यों ये जीवन समर्पित किया है, क्यों संसार को छोड़कर यहाँ जंगल में आ गए। तब ये जंगल था सब, तो अंदर से प्रेरणाएं उठती थी कि हम ऐसे महान तपस्वी बने कि यहीं से सारे संसार को लाइट माइट जाए। सुनते थे ये सब बातें, शास्त्रों में भी हैं ये बातें, और बाबा साकार में कहीं कहीं इशारा देते थे कि आबू की पहाड़ियों से सारे संसार को लाइट मिलेगी, प्रकाश फैलेगा यहाँ से, साक्षात्कार होंगे कि पहाड़ियों पर कुछ ऐसे तपस्वी तपस्या करते हैं जिनकी शांति का प्रभाव, शक्तियों का प्रभाव सारे संसार तक पहुंच रहा है। तो वो हम सब हैं। हमें सोचना है कि हम किस तरह अपने जीवन को महान से महान बनाएं। लंबी यात्रा है हमारी, एक दिन की नहीं। कल से हमें भी ये बात कही गई थी कि प्योरिटी पर हम कुछ सुनाएं आपको। हमारी ये यात्रा बहुत लंबी है, तपस्या की यात्रा भी लंबी है, और ऐसे तपस्या के मार्ग में विघ्न बाधाएं भी बहुत हैं। एक बाधाएं होती हैं मनुष्य को संसार की ओर से, जो हमें नहीं है। संसार में रहने वालों को दूसरी बाधाएं होती हैं अपने परिवार की ओर से, परिवार की पालना करने के लिए धन की ओर से, पारिवारिक सदस्यों के संस्कारों के टकराव के रूप में, वो भी हम सबके पास नहीं है। हम हैं सेवाओं के मार्ग में, हमारा परिवार बड़ा है। परिवार से आने वाली बाधाएं भी कुछ मूल्य रखती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बाधाएं जो मनुष्य के लिए भारी पड़ती हैं, वो हैं अपने अंदर के संस्कारों की बाधाएं। जैसे संसार में लोग कहते आए कि किसी बहुत शक्तिशाली सेना को हराना संभव हो सकता है, लेकिन अंदर के पांचों विकारों को जीतना बहुत कठिन काम है। बाबा ने हम सबके लिए ये कठिन काम सरल तो कर दिया है, परंतु इसको सरल हमें स्वयं करना है। बाबा कहते हैं, इस मार्ग पर कदम रखना मानव विघ्नों का आह्वान करना। हम अपने को सबसे पहले परिवार की ओर से आने वाले विघ्नों के लिए तैयार रखें। हम ये बिल्कुल न सोचकर चलें कि हम ईश्वरीय परिवार में हैं तो परिवार की ओर से हमें बाधाएं नहीं आएंगी, अवश्य आएंगी, क्योंकि हम इस परिवार में कौन इकट्ठे हुए हैं। हम सब जानते हैं जो जन्म जन्म के साथी हैं। दूसरी चीज, हम सब इस परिवार में वो इकट्ठे हुए हैं, कुछ हम में से सतयुग में राजाएं रहे, कुछ त्रेता में, अनेक द्वापुर में, और उससे भी ज्यादा कलयुग में। सतयुग में कम, उससे ज्यादा त्रेता में, उससे ज्यादा द्वापुर में, उससे ज्यादा कलयुग में। हमें ये जानना चाहिए कि जिन्होंने राजयोग किया है उन्हें राजाई मिलती रहेगी, छोटी बड़ी कोई भी। तो हमारे जन्म जन्म के आपस में संबंध हैं, कहीं सीधे कहीं उल्टे, कहीं पाप कर्मों के कहीं पुण्य के, कहीं सहयोग के कहीं विघ्नों के, वो सब अब हमें चुकतू करने हैं। हम में से कई कलयुग में राजा रहे होंगे आपस में, और छोटी छोटी बातों के संघर्ष किया होगा, वो सब संघर्ष यहाँ दिखाई देता है। मन का संघर्ष, बोल का संघर्ष, संस्कारों का संघर्ष, सूक्ष्म असहयोग का संघर्ष, वो सब यहाँ है। हमें इस चीज को स्वीकार करते हुए इससे पार होना है, और इससे पार होने की बहुत सरल युक्ति बाबा ने बता दी। इस बार तो बार बार कहा, आप सबको याद है वो बात कि 99 में कम से कम 108 रतन तो वेस्ट और निगेटिव से मुक्त होने ही चाहिए। हम अगर वेस्ट और निगेटिव से मुक्त हो जाएं, तो हम इस जीवन के 95% विघ्नों से ऊपर रहते हैं। सभी को ये बात बहुत अच्छी तरह धारण करनी है। जो कुछ भी नहीं है उसके बारे में व्यर्थ चलता है, और अगर कोई बात हो उसको हम तुरंत निगेटिव से पॉजिटिव कर लें, तो हमारे जीवन के 95% विघ्न स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। मन सुनता है, बातें कुछ नहीं होती, चाहे व्यर्थ होती है या होती ही नहीं, लोग कहानी बना लेते हैं, सुनाते हैं, और संकल्प चलता है, स्थिति बिगड़ती है, संबंध बिगड़ते हैं। इसलिए एक बहुत अच्छी धारणा हमें इस तरह की बनानी चाहिए। मैंने इस साल की मुरलियों से बहुत अच्छे अच्छे जो प्रेरणादायक पॉइंट्स थे वो लिखे हैं, अब तक ही, कल तक ही, और मैंने उन पे ऐसे पॉइंट्स पे निशान लगाए जिनको मैं पहले एक एक दिन लेके उसको फुल प्रैक्टिस करूंगा। बहुत अच्छा है वो। आप सब भी साल की मुरलियों से आपको जो अच्छी बातें लगें उनको नोट करके एक एक दिन, तीन तीन दिन या एक एक हफ्ता उनको अभ्यास में लाओ। उनमें एक पॉइंट बहुत सुंदर थी, सिंपल और सुंदर, कि ऐसी कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए, मन को कहो स्टॉप और मन स्टॉप हो जाए, ये सहज विधि है कर्मातीत होने की। तो ये एक प्रैक्टिस है, इसको हम एक दिन भी करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, कई तरह के अच्छे अनुभव होने लगते हैं। बाबा ने कहा कितनी सुंदर बातें हैं कि कल्प में केवल एक बार ऑलमाइटी साथ देने की ऑफर करता है। साथ क्यों नहीं लेते हो? एक एक दिन इन चीजों का अभ्यास करें, एक एक दिन में भी कई बार उसके साथ की हमें आवश्यकता पड़ती है। बाबा ने कहा जहाँ सर्वशक्तिवान का साथ हो वहाँ माया आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। एक एक दिन इसका अभ्यास करें तो ये सब है स्वयं को ज्ञान रत्नों से भरपूर करना। और ज्ञान रत्नों से जब आत्मा भरपूर हो जाती है तो व्यर्थ और निगेटिव दोनों को समाप्त करने में मदद मिलती है। एक बहुत अच्छी बात बाबा की आ गई कि माया के इस युद्ध में घबराकर अपने शस्त्र न छोड़ दो। बहुत बहुत काम की बात है, हम सब युद्ध के मैदान में हैं और हमें अपने पास कम से कम 8 शस्त्र नोट कर लेने चाहिए। 8 भुजा दिखाते हैं देवियों को, उनमें शस्त्र दिखाते हैं, तो कम से कम 8 पावरफुल शस्त्र हमें अपने पास नोट कर लेने हैं, पावरफुल पॉइंट्स, और उनके प्रयोग के द्वारा हम माया को नष्ट करें तो बहुत अच्छे अनुभव होंगे। इस तरह एक लक्ष्य समय बनाना है कि हम निगेटिव और व्यर्थ से मुक्त होते चले। बाबा ने इस बार हम सब के लिए, मैं आपको ये कहूंगा कि इस बार की मुरलियों से सब्जेक्ट वाइज कुछ पॉइंट आप निकाल लें। जैसे कई मुरलियों में आ गई है एक बात कि अब जब प्रकृति विनाश करेगी तो हमारी स्थिति कैसी हो। जो भी पॉइंट्स बाबा ने कही हैं उसको नोट करें। नोट नहीं हम करते तो उसे भूल जाते हैं। दूसरी बात कही है बाबा किस तरह का स्वरूप बच्चों का देखना चाहते हैं। जो हम सबसे मुरली चली है होली पर ओम शांति भवन में, वो मुरली साल की सबसे गहरी मुरली है। उसमें भी ये है बाबा कैसा पवित्र स्वरूप देखना चाहते हैं, नैनों में किस तरह पवित्रता हो, मस्तक पर किस तरह पवित्रता हो, बोल कैसे हो, कर्मों में कैसी निर्माणता हो। पवित्रता का एक चित्र खींच दिया है बाबा ने, तो ऐसी बातें नोट करें। ऐसे ही इस बार सूक्ष्म सेवा के लिए बहुत गहरी गहरी बातें कही गई हैं, वो अलग से नोट कर लें। जिसमें आज भी स्लोगन था और मुरली का सबसे अच्छा पॉइंट है वो कि बाप के पास स्थित होकर मनोबल द्वारा अगर वाइब्रेशंस देने की सेवा करेंगे तो थोड़े ही समय में अनेक गुनी प्रारब्ध जमा हो जाएगी। तो मैं जब ऐसी बातें सुनता हूँ, आपको याद होगा बाबा ने ये भी कहा ब्रह्मा बाबा तुम्हारा आह्वान करता है, उसकी आवाज सुनो। आवाज देता है बाबा रोज, आ जाओ फरिश्ते बनकर उड़ाओ। तो जब मैं ऐसी बातें सुनता हूँ तो मैं अपना अनुभव सुनाऊं। बहुत समय से ये एक अनुभव है, जब बाबा की बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं तो एक प्रेरणा आती है कि हमें कितने बड़े बड़े काम करने हैं। इसलिए हमें अपने समय को और संकल्प शक्ति को छोटी छोटी बातों में नष्ट नहीं करना चाहिए। बहुत समय नष्ट होता है मनुष्य का। अब जब हम मौन रखते हैं, कई भाई सेवाओं में मौन रखते हैं, उन्हें स्पष्ट अनुभव होता होगा कि जब हम मौन नहीं रखते हमारा समय कितना ऐसे ही चला जाता है जिसका हमें पता नहीं चलता, जिसे हम वेस्ट समझते भी नहीं हैं। तो हमें बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, संसार हमारी ओर देख रहा है और हमें पता चलेगा किस तरह देखता है संसार हमारी ओर और हमने अगर अपने अंदर रूहानी शक्तियां नहीं भरी होंगी तो हम अपने को बहुत पीछे खड़ा हुआ देखेंगे। जैसे अब हमारे द्वार पर मान लो 100 लोग आ जाएं, बहुत दुखी हों, हम जानते हैं लोगों का दुख कैसा होता है, ऐसा दुख कि वो उस दुख से निकल ना पा रहे हों। हमने देखा है लोगों के चित्र देखे हैं, केवल जब पिछले साल कंडला में तूफान आया था और राजस्थान के कई लड़के मर गए थे उसमें, बेचारे गरीबों के लड़के, एक माँ बाप का चित्र देखा हमने, मुझे उसकी वो छवि याद रहती है, डिप्रेशन वाला चेहरा, कि उसके 2 ही लड़के थे कमाने वाले, दोनों मर गए, डेड बॉडी भी नहीं मिली, दोनों माँ बाप उदास बैठे हैं, लोग उनको समझा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ये उदासी से निकल जाएं, लेकिन कई दिनों के प्रयास के बाद भी कोई उन्हें उदासी से नहीं निकाल पाया। न वो खाना खा सकते हैं, न वो सो सकते हैं, न वो कुछ सोच रहे हैं, सोच भी डेड हो गया है, दूसरों के शब्द भी उनपे असर नहीं कर रहे थे। ऐसी घटनाएं अब संसार में अनगिनत होंगी, अनगिनत, और ऐसी आत्माएं हमारे द्वार पर आएंगी। क्या हम अपनी दृष्टि देकर, दो बोल बोलकर, वाइब्रेशंस देकर आत्माओं को ऐसे गहन डिप्रेशन से, दुख से निकाल सकेंगे? मैं पूछा करता हूं अपने से। हमारे पास ऐसे लोग आते भी हैं, मेरे पास तो आते हैं, साल में 10-15 लोग आ जाते हैं जो हमसे मांगते हैं, ये है हमारा, आप हमें मुक्त कर दो, बिल्कुल सामने बैठकर अपने मुख से बोलते हैं, ये कर दो हमारे लिए। किसी किसी केस में हो जाता है, किसी केस में नहीं होता। मैं अपने से पूछता हूँ यही बात कि आगे चल के हजारों और बाद में लाखों आत्माएं हमारे पास आएंगी, क्या हमने अपने को ईश्वरीय शक्तियों से इतना भरपूर किया है कि हम अपनी दृष्टि से, संकल्प से लोगों को मुक्त कर पाएं? बड़ा दर्दनाक सीन हमारे सामने आ रहा है, तो हमें अंतर्मुखी होकर अब इस समय को और संकल्प शक्ति को सफल करना है। योग अभ्यास के लिए बहुत सारी बातें हमारे सामने हैं। योग में बाबा की साल की मुरलियों में एक बहुत ही सुंदर बात है, योग की तो कॉमन बात है वो, पर बाबा के शब्द बहुत सुंदर हैं। मैं आपको 2 बाबा के महावाक्य की याद दिलाऊं। एक बाबा ने कहा, तुम्हारा चेहरा सदा ही खिलता रहे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं वो बात सुना रहा हूँ जिससे मेरा बहुत विचार चलता रहता है, अभ्यास भी और विचार भी। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे खाने को न मिले, चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे, चाहे कोई ग्लानी करता रहे, निंदा करता रहे, तुम्हारा चेहरा सदा ही खिला रहे। निंदा करने वाला करके थक जाए और तुम्हारे चेहरे पर कोई भी रेखा उदासी की ना आए, कितनी बड़ी बात है। बाबा ने कहा कि चाहे मनुष्यों की हलचल हो, चाहे प्रकृति की हलचल, सेफ्टी का साधन होगा 1 सेकंड में विदेही स्थिति। नोट करने की बात है, नोट करने का अर्थ है प्रैक्टिस में नेचुरल लाने की बात है। आने वाले समय में मनुष्यों की भी हलचल होगी और प्रकृति की भी बहुत, और सेफ्टी का साधन होगा 1 सेकंड में हम इस फीलिंग में आ जाएं कि मैं आत्मा इस देह में रहते हुए भी इसमें नहीं हूँ। ये बाबा के अंतिम शब्द थे साकार में। अंतिम 6 मास में बाबा ये बात मुरलियों में भी और वैसे ही बोला करते थे कि बाबा इस शरीर में ऐसे रहते हैं जैसे इस शरीर में नहीं है। बाबा इस दुनिया में अब ऐसे रहते हैं जैसे इस दुनिया में नहीं है। हम सब सुनने वाले सोचते थे इससे बाबा बोल रहा है कि मैं इस तन में ऐसे रहता हूँ जैसे इसमें नहीं हूँ, पर वो शिव बाबा नहीं बोल रहा था, ब्रह्मा बाबा के अनुभव थे अंतिम, कि शरीर में रहते भी बाबा विदेही स्थिति को प्राप्त थे, संसार में रहते भी ऐसे रहते थे कि संसार में नहीं रहते हैं, संसार से कुछ लेना देना नहीं है। तो हम सब भी विदेही स्थिति की ओर चलेंगे। अब 5 मिनट के लिए हम एक अभ्यास करते हैं। अभ्यास प्योरिटी से संबंधित है और रोज हमें करना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी हर कर्मेंद्री को शीतल करना है, उसे पवित्र वाइब्रेशंस देकर हम एक नशे में स्वयं को स्थित कर लें, अपनी चेतना को ले चलें भ्रकुटि के बीच कि मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, मुझसे चारों ओर पवित्रता की तेजस्वी किरणें फैल रही हैं। पहले हम अभ्यास करेंगे कि हमसे इतनी तेज पवित्रता की किरणें फैलती हैं सफेद, जो सारे संसार में फैल जाती हैं, सारे संसार को ढक लेती हैं जैसे पवित्रता के सफेद बादलों से केवल चमकती हुई मणि रह जाती है, और उसके बाद हमसे निकलने वाली सफेद पवित्रता की किरणें हमारे सारे शरीर में फैल रही हैं, हमारे शरीर से निकलकर नीचे धरती में प्रवेश कर रही हैं, बाबा से आ रही हैं, आत्मा से पहले चारों ओर फैल रही हैं, फिर सारे शरीर में फैल रही हैं, फिर शरीर से निकलकर पैरों से निकलकर धरती में फैल रही हैं और सबको पावन कर रही हैं। 5 मिनट के लिए इसी संकल्प पर स्वयं को एकाग्र करेंगे। सभी साधना के मार्ग पर हैं और हमें बाबा ने राजयोग की साधना भिन्न भिन्न चीजों की प्राप्तियों के लिए सिखाई है। जब हम सर्वशक्तिवान से योग करते हैं तो हमारे पाप नष्ट होने लगते हैं। मैं इसको बहुत सिंपल रूप में आपके सामने कहूं। और दूसरा, इसी राजयोग का लक्ष्य है आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना, पाप नष्ट करना और आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना, दोनों का गहरा संबंध है। इसलिए बाबा ने अपनी मुरली में कह दिया, अभी भी 3-4 दिन पहले आया, कि तुमने काम विकार से ही सबसे ज्यादा पाप किए हैं, सबसे बड़ा पाप काम ही है, दूसरा क्रोध, क्योंकि इससे आत्मा की शक्ति तेजी से नष्ट हो जाती है। तो हमें अपनी साधनाओं के द्वारा अपने अंदर प्योरिटी का बल बढ़ाना है, हम सभी संपूर्ण पावन बनेंगे। ये बात हमें स्पष्ट होनी चाहिए। बाबा की मुरलियों में आ जाता है साकार में। साकार मुरलियों की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि शिव बाबा ने ज्ञान देते हुए हर चीज स्पष्ट सुना दी है, कुछ भी छुपाया नहीं, कुछ भी गोल गोल नहीं किया, स्पष्ट कह दिया कि 8 आत्माएं ही संपूर्ण पावन बनती हैं। उस दिन आ गया, केवल 8 आत्माओं की अंत तक सिविलाइज होती हैं, बाकी सब की कहीं ना कहीं क्रिमिनलाइज रह जाती है। इन बातों को सुनकर हम ये न सोचें कि संपूर्ण पवित्रता सबके लिए नहीं है, आत्मा की सभी की। एक विशेष रहस्य है ये, आप में से कईयों को इसका पता है, पर मैं जानता हूं अपने बीके भी इस बारे में कई प्रश्न करते हैं, कईयों को इस चीज का नहीं पता है कि आत्माएं मूल रूप में जब परम धाम में हैं हम सब, तो हम सब की पावर, डिग्री ऑफ प्योरिटी अलग अलग है। शिव बाबा उनमें है 100 डिग्री प्योर, ब्रह्मा 99, ममा 98 और इस तरह अस्वपन 97, 96, 95, 94। उसके बाद विजयी रतन, सबकी संपूर्णता की अपनी अपनी फाइनल डिग्री है, हर एक में उतनी उतनी प्योरिटी होती है, सबको ही संपूर्ण बनना है, सबको ही संपूर्ण पावन बनना है। किसी की प्योरिटी कितनी रहेगी, किसी की कितनी, जैसे एक कमरे में अगर 10 बल्ब लगाए हों, 1000 वोट का, 100 का, 60 का, 40 का, 25 का और 0 के, तो जलेंगे सब, लेकिन सबकी लाइट अलग अलग होगी। कितनी दूर तक प्रकाश पहुंचता है ये सब हम समझते हैं। सूरज आसमान में चमकता है, सारे संसार को रोशनी दे सकता है, सबसे बड़ी चीज। चांद चमकता है, सारी रात को रोशन कर देता है, सारे संसार को। बल्ब बड़े से बड़े लगा दें हम, वो कुछ दूरी तक अपनी रोशनी फैलाएंगे। हम सभी को संपूर्ण पवित्र होना ही है, लेकिन किसी की प्योरिटी संसार के लिए लाइट बन जाती है और किसी की प्योरिटी केवल अपने की लाइट रह जाती है। किसी की प्योरिटी सारी प्रकृति को पावन कर देती है, किसी की प्योरिटी आसपास की प्रकृति को केवल पावन करती है। तो हमें अपने को संपूर्ण बनाने का लक्ष्य रखना है और ये जानना है। इस बार के बाबा के महावाक्य हैं, पवित्रता में कोई भी कमी है तो योग शक्तिशाली नहीं हो सकता। याद होगा आपको इसी बार के अव्यक्त महावाक्य हैं, फाउंडेशन है प्योरिटी, नई बात नहीं है, बाबा सदा सुनाते आए हैं। तो हमें अपनी प्योरिटी को भिन्न भिन्न रूप से संपूर्ण करना है। पॉजिटिवली उसके कुछ अभ्यास हैं और कुछ अभ्यास उसको निगेटिवली खत्म करने के लिए। पॉजिटिवली का अर्थ है कि हम अपनी भावनाओं को श्रेष्ठ करें। आप मुरलियों में पढ़ें, संपूर्ण प्योरिटी का जो नक्शा बाबा ने खींचा है उसमें एक इम्पोर्टेंट बात सदा आई है, सभी के लिए श्रेष्ठ भावनाएं। दूसरी चीज, हम अपने व्यर्थ को समाप्त करें। प्योरिटी अर्थात महान संकल्पों में स्थित, साधारण संकल्पों से भी परे। हम इस संसार में मनुष्यों की ओर से अपनी बुद्धि को निकालते चलें। सहज काम नहीं है, हम सब जानते हैं। हर मनुष्य का बुद्धि योग कहीं ना कहीं मनुष्यों से और कारोबार से लगा होता है। एक बुद्धि योग लगा होता है मनुष्य का लगाव के कारण, दूसरा बुद्धि योग लगा होता है टकराव के कारण। दोनों ही इम्प्योरिटी हैं। किससे हमारे टकराव हो गया? हमारे मन में उसी की याद बनी हुई है, उसी के संकल्प चल रहे हैं। ये लगाव से भी खतरनाक है। लगाव में मनुष्य की एनर्जी धीरे धीरे नष्ट होती है, टकराव में उसकी एनर्जी तेजी से नष्ट हो जाती है। इसका हमें ध्यान रखना है। बाबा ने आत्मिक भाव, जो हमारी एक बहुत बड़ी साधना है, योग के लिए भी और प्योरिटी के लिए भी, संपूर्ण प्योरिटी की फाइनल परिभाषा है ही ये, जब आत्मा संपूर्ण आत्मिक भाव में स्थित हो जाए, दूसरों को देखते हुए आत्मिक वृत्ति में स्थित रहे, ये बहुत बड़ी साधना है। हमारे सामने अनेक दृश्य दिखाई देते हैं, जैसा हम लोगों को कभी कभी स्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, हमारी तो इस पे चर्चाएं भी होती। तो इन प्रतिबंधों से हमारी प्योरिटी में मदद तो मिल सकती है, पर हम प्योरिटी का आनंद नहीं ले सकते। मैं ये नहीं कहता कि ये बंधन हमारे लिए नहीं होने चाहिए, हमें खुला छोड़ दिया जाए। ब्रह्मचर्य के लिए बंधन भी आवश्यक चीज है। मैं आपको कहानी सुना दो छोटी सी। सुखदेव बहुत प्रसिद्ध ऋषि हुए, व्यास के पुत्र। हालांकि ये कहानी पौराणिक है पर शिक्षात्मक है बहुत ज्यादा। तो व्यास ने सुखदेव को सिखाया कि ब्रह्मचारी को कभी अकेला नहीं रहना चाहिए। तो उसने कहा, क्यों, इसमें क्या है, ब्रह्मचारी को तो अकेला ही रहना चाहिए, किसी को नहीं देखेंगे तो अच्छा रहेगा ना, ब्रह्मचर्य की शक्ति बढ़ जाएगी। उसने कहा ठीक है, वो अकेला रहने लगा। व्यास जी स्वयं नारी रूप धारण करके पहुंच गए। बाहर बरसात हो रही थी, ठंडी हवा चल रही थी। सुखदेव ने देखा, सुखदेव एक ऋषि है, उसका हृदय प्यार और रहम से भरा हुआ। उसने देखा, अरे कोई माता बाहर हवा में तूफान में। उसने कहा, अरे माता जी आओ, ये झोपड़ी है यहाँ, इसके बाहर बैठ जाओ। इसके पास थोड़ा सा ढका हुआ था, बाहर बैठ गया। उसको ठिठुर रही, ठंड लग रहा, ठंड लग रही बहुत। तुम्हें बहुत ठंड लग रही, अच्छा झोंपड़ी के अंदर आ जाओ। झोंपड़ी के अंदर बैठ गया। फिर और आगे बढ़ी बात, उसने कहा, मेरा सारा शरीर पेन कर रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है मुझे। तो उसने, वो तो ऋषि था, उसको इम्प्योरिटी थी ही नहीं। सुखदेव के लिए लिखा है, उसको ज्ञान ही नहीं था इम्प्योरिटी का। तो उसने कहा, मेरे हाथ पैर दबा दो तुम। तो वो उसके हाथ पैर दबाने लगा। व्यास जी प्रकट हो गए। कावल, इसीलिए कहा गया है कि ब्रह्मचारी को अकेला नहीं रहना। जब यहाँ से माया शुरू होती है तो हमारे लिए प्रतिबंध तो आवश्यक है, लेकिन आत्मा देखें, ये भी तो प्रैक्टिस हो सकता है। हम बात करें, मर्यादित करें, हम अपने लगाव को प्रकट होने ही न दें, इमर्जी न होने दें, नहीं अपनाया जा सकता। प्योरिटी को हमें नेचुरल बनाना है। एक बहुत अच्छा अभ्यास है आत्मिक वृत्ति बनाने का, हम अपने 84 जन्मों में यात्रा किया करें। एक बार रोज बहुत गहराई से, जिसको बाबा सुदर्शन चक्र कहते हैं, उसका ये एक स्वरूप है। हमें ये पता है कि कभी मैं आत्मा मेल बॉडी में हूँ, कभी फीमेल बॉडी में। हम अपने 84 जन्म सामने लाएं, एक मेल एक फीमेल, एक मेल एक फीमेल, और फील करें कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में जा रही है, दूसरा छोड़ तीसरे में। आप फील करें, मैं आत्मा फीमेल बॉडी में हूँ, फीमेल बॉडी के लिए आकर्षण नष्ट होने लगेगा। ये है रियल प्रैक्टिस। कोई भी सुंदरता आपको फीकी लगने लगेगी, लेकिन बार बार इसकी सूक्ष्मता से प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। बिना साधना के, केवल सिद्धांतों और बंधनों और मर्यादाओं से हम संपूर्ण पावन नहीं बन सकते। कभी कभी हमारी ये प्योरिटी हमारे लिए भय पैदा करा देती है। जैसे घरों में कन्याओं को सिखा दिया जाता है, अकेली नहीं जाना कहीं भी। अब वो जब भी कहीं अकेली जाएगी, उसके मन में भय पैदा होगा। बाजार में भी जाए कुछ लेने, भय पैदा होगा। हमें न अपने अंदर भय रखना है और न दूसरों को भयभीत करना है। हमें अपनी प्योरिटी को इतना स्ट्रॉन्ग करना है और सिखाना है कि हम असुरों के बीच चले जाएं, विकारी मनुष्यों के बीच चले जाएं, गंदे वातावरण में चले जाएं, वहां चले जाएं जहाँ चारों ओर गंदगी गंदगी हो, इम्प्योरिटी हो, तो भी किसी की इम्प्योरिटी हमें छू न पाए। ऐसी स्थिति की ओर हमें चलना है। भयभीत नहीं रहना कि देखना नहीं है, देख लेंगे तो कुछ हो जाएगा, इसे कुछ नहीं होना है। तो ऐसा स्ट्रॉन्ग हमें स्वयं को बनाना है अपनी साधनाओं के द्वारा। तो हमें अपनी टीचिंग्स में भय पैदा नहीं करना है, स्वयं को और दूसरों को शक्ति स्वरूप बनाना है। कुछ स्थूल बातें हमें जाननी चाहिए स्पिरिटी के बारे में, जो बहुत इम्पोर्टेंट है मनुष्य के बारे में जानने के लिए। और उसमें बहुत, हमारे शरीर के अंदर भोजन से रस बनते हैं, वीर्य बनता है, रक्त बनता है। अब ये वीर्य निरंतर बन रहा है और इस वीर्य में इम्प्योरिटी है बहुत ज्यादा। हमारे शरीर में भी बहुत इम्प्योरिटी है। हमारे शरीर की इम्प्योरिटी इस बात पे निर्भर करती है कि हमारे माता पिता के अंदर कितनी इम्प्योरिटी थी, हमने अपने बचपन से कैसा जीवन व्यतीत किया है, संग कैसा रहा, क्या पढ़ा है, क्या देखा है। तो इस वीर्य की दो गति हैं। एक तो ये इकट्ठा होता रहता है निरंतर गोनाल ग्लैंड में, जिसको शास्त्रों में मूलाधार चक्र कहते हैं। आपने सब सुना होगा, चक्रों का वर्णन है 7। आजकल की मेडिकल साइंस उन्हें ही ग्लैंड्स कहती हैं, ग्रंथियां। वो अलग नहीं है, 8 ग्रंथियां, 7 चक्र पहले से गिने गए हैं। मूलाधार चक्र में वीर्य इकट्ठा होता रहता है। वो जब भर जाता है तो वीर्य की गति ऊपर की ओर होती है और दूसरे जितने भी ग्लैंड्स हैं वो उसको सोखते रहते हैं, अपने में लेते रहते हैं और वो सूक्ष्म होता होता ब्रेन तक पहुंच जाता है। वो ब्रेन की एनर्जी बन जाता है, वो शरीर की शक्ति भी है और ब्रेन की शक्ति भी है। अब ये जो हमारे मूलाधार चक्र में वीर्य इकट्ठा हो गया, भोगी लोगों का ये वीर्य भोग विलास में नष्ट होता रहता है और इतना नष्ट होता है किसी का कि वो जो ऊपर जाने वाला वीर्य है उसको ऊपर जाने का मौका नहीं मिलता, उसकी गति भी नीचे की ओर हो जाती है। इसलिए विकारी लोग योग नहीं कर सकते, उनका शरीर भी धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। जो जितना ज्यादा विकारी होगा 50 साल में बूढ़ा हो जाएगा बिल्कुल, उसके अंदर चिंतन की शक्ति नहीं रहेगी, रोग निरोधक शक्ति भी नहीं रहेगी। हम सभी जो पवित्र हैं उनका वीर्य मूलाधार चक्र में भरने के बाद क्योंकि वो नष्ट नहीं हो रहा है तो बाकी की गति ऊपर की ओर हो जाती है। हमारे लिए ये आवश्यक है, जिसको भी अपनी पवित्रता को अच्छा करना है, आवश्यक है प्योरिटी को नेचुरल करने के लिए कि हम सभी विशेष रूप से कुमार एक तो हार्ड वर्क करें और दूसरा अच्छा चिंतन करें। जिसके पास ये दोनों चीजें नहीं हैं, उसको प्रॉब्लम होंगी, स्वपन दोष होंगे या दृष्टि व्यक्ति बहुत जाएगी, क्योंकि वीर्य की शरीर में अधिकता शरीर में आकर्षण पैदा करती है, नस नाड़ियों पे जो शरीर का स्ट्रक्चर है उस पर दबाव डालती है, उसे व्यर्थ संकल्प चलते हैं।
ओम शांति।